मेरे बहुत प्यारे और बहुत नौजवान साथियों नमस्कार। मित्रों, आज 25 अप्रैल 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही दोस्तों मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं पीयूष अग्रवाल, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, अरविंद कुमार प्रजापति, आप न्यू दिल्ली से हैं, और मुहर्रम मियां, आप मियां रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं। तो पीयूष, अरविंद और मुहर्रम, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसी क्रम में मैं एक सूचना आपको और दे दूं, कई मेल पता नहीं 5-7 दिनों से मेरे पास आ रहे हैं और उसमें इन्होंने जो अक्टूबर नवंबर का जो बैच होने वाला है उसकी डेट जाननी चाहिए है। हालांकि वेबसाइट पर वो डेट ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि यह जो डेट है ये 22 अक्टूबर से क्लासेज शुरू होंगी। 15 दिन की क्लासेस होती हैं और 5 नवंबर की शाम 6 बजे ये क्लासेस खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, डेट है 22 अक्टूबर से 5 नवंबर 2017। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं एक छोटी सी और आप सबको सूचना दे दूं। मेरे पास लगभग रोजाना ही कुछ मेल ऐसे आते हैं कि सर, हम आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी, इस तरह की वो उनकी जिज्ञासाएं रहती हैं और वो बहुत ही स्वाभाविक भी है। और मैं इस बात का सम्मान भी करता हूं कि जो स्टूडेंट खासकर सिविल सर्विस की तैयारी में जुटे हुए हैं, आईएएस जैसी तैयारी में, तो उन्हें गाइडेंस की जरूरत कहीं ना कहीं तो पड़ती ही है। हाँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो शुरू से ब्रिलियंट रहे हैं, बहुत अच्छे यूनिवर्सिटीज में हैं, तो उनको इस तरह की गाइडेंस मिलती रही है, बहुत अच्छे प्रोफेसर्स मिल गए हैं, या उनके घर का माहौल इस तरीके का सिविल सर्विसेज का है, तो उनको तो फिर एक जन्मजात आप यूं कह लीजिए कि नेचुरल तरीके से गाइडेंस मिल रहा है। लेकिन यदि गाइडेंस मिल जाता है तो चीजें बेहतर हो जाती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर गाइडेंस नहीं मिला तो चीजें बदतर ही होती चली जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मित्रों, इसके लिए मैं एक दो आपको पॉइंट्स बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि YouTube पर मेरे कुछ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। YouTube पर आप जाएंगे तो एक तो 11 पिलर्स नाम से है कि सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए किन 11 स्तंभों की जरूरत होती, यानी कि कौन से 11 पॉइंट्स होते हैं। ये मित्रों YouTube पर अवेलेबल है, आप इसे सुन सकते हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट ही आपके लगेंगे, वो ज्यादा वक्त आपका नहीं लेगा, लेकिन इससे आपके दिमाग में एक धारणा बन जाएगी कि अच्छा, सिविल सर्विस की तैयारी ऐसे ऐसे की जाती है। इसके बाद मित्रों, फिर अभी तक YouTube पर इसी 11 पिलर्स के 1-2-3 पिलर्स से भी जुड़े हुए प्रोग्राम्स उस पर अवेलेबल हैं कि जो 11 पिलर्स हैं उसमें से शुरू के 3 पिलर्स को मैंने डिस्क्राइब किया है कि इन पिलर्स का आपको कैसे कैसे उपयोग करना है। तो प्लीज आप सब जो इसके प्रति उत्सुक हैं वो YouTube पर जाकर उस प्रोग्राम को देख सकते हैं। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं, आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग 1 और आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग 2। मेरी कोशिश रही है कि स्टूडेंट के दिमाग में जितने भी सवाल हो सकते हैं, उनकी जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं, और अगर सवाल और समस्याएं नहीं भी हैं तो तैयारी करने का जो तरीका हो सकता है उसके मैक्सिमम पॉइंट्स मैं इन दोनों किताबों में कवर कर लूं। तो ये 2 किताब अवेलेबल हैं, आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग 1 और आप आईएएस कैसे बनेंगे भाग 2। इसमें जो भाग 1 किताब है ये मैं बताना चाहूंगा कि ओरिजिनली तो मैंने हिंदी में लिखी है, लेकिन ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ये गुजराती में भी अवेलेबल है और ये पंजाबी में भी अवेलेबल है। लेकिन जो भाग 2 है वो अभी सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है, तो आप ये किताब ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे आपको बहुत अच्छी गाइडलाइंस मिल जाएंगी। तो मित्रों, इस सूचना के बाद आइए अब मैं आता हूं न्यूज एनालिसिस पर। कल की रेडियो न्यूज भी आप लोगों ने सुनी होगी फ्रेंड्स, और टीवी, यानी कि टीवी जब मैं कहता हूं तो मेरा सरोकार जो है ना दूरदर्शन न्यूज से होता है। देखिए, दूरदर्शन न्यूज में तो आपने देखा कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो नीति आयोग कि काउंसिल की जो बैठक हुई थी उसके बारे में न्यूज को फिर से दिखाया गया था, लेकिन कुछ चीजें ज्यादा ऐड की गई थी। और साथ ही जो सबसे चौंकाने वाली और जो दुखद खबर थी वो थी छत्तीसगढ़ का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उसमें नक्सली हमला और जिसमें सीआरपीएफ के 26 जवान शहीद हो गए। ये सबसे बड़ी खबर है जो अभी जो मैंने खबर कही, नक्सली हमले की खबर सबसे बड़ी खबर है। और सच पूछे तो इसके सिवाय कोई दूसरी खबर है भी नहीं। अगर आप अखबार भी देखेंगे तो उसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, एक जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो विश्वनाथ जी को काशीनाथ नाम देख लीजिएगा आप, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, उनको जो दिया गया है वो स्टेट सिविल सर्विस या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए उपयोगी हो सकता है। खासकर दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म इंडस्ट्री का दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। बेसिकली ये पुरस्कार नहीं है, ये सर्वोच्च सम्मान है। तो ये नाम आप लोग एक बार देख लीजिएगा। मित्रों, खासकर आज मैं दो पॉइंट्स पर आपसे बात करना चाह रहा हूं। पहला तो ये कि जो नक्सलाइट जो मामला है हमारे देश का जो समस्या है, और दूसरी जो बॉर्डर, आपने देखा कि इसमें जो जवान मारे गए हैं वो सीआरपीएफ के हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसे हम कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, तो इस तरह से मैं आज अपने इस आज के आपके साथ की बातचीत को दो भागों में डिवाइड करना चाहता हूं। दोस्तों, आइए तो सबसे पहले मैं सीआरपीएफ से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है उस पर थोड़ी सी बात आपसे कर लूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि दो भागों में हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सिक्योरिटी या डिफेंस कह लीजिए, आप जो भी आप कहना चाहें। एक तो हमारे पास आर्मी है ही है, आर्मी के तीन विंग्स हैं आप जानते हैं, थल सेना, नौसेना और जलसेना। थल सेना, नौसेना और वायुसेना, जलसेना और नौसेना एक ही होते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको एक और शब्द सुनने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं पैरा मिलिट्री फोर्सेस। अभी जो मैंने तीन नाम बताए तो मिलिट्री की फोर्सेस हैं, है ना, ये मिलिट्री की फोर्सेस हैं, आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। इसके बाद हमें नाम सुनते हैं पैरा मिलिट्री फोर्सेस। पैरा मिलिट्री फोर्सेस का मतलब है कि जो मिलिट्री नहीं है, जो आर्मी नहीं है, लेकिन आर्मी से कम भी नहीं है, लेकिन पुलिस नहीं है। उनके नाम के साथ आपको किसी के नाम के साथ पुलिस मिलेगा। देखिए, अगर हम मिलिट्री को ले लें, टॉप पर है जो डिफेंस के लिए है, है ना, बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा के लिए है। पुलिस क्या है? पुलिस हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। पुलिस राज्यों के अधीन है, वो लॉ एंड ऑर्डर के तहत हमारे देश में, हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में वो मदद करती है। इसके बीच में जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स है। तो इसमें आपको फोर्स शब्द भी मिल जाएगा और पुलिस शब्द भी मिल जाएगा, ये पैरामिलिट्री फोर्स है। दोस्तों, सच पूछे तो पैरामिलिट्री शब्द जिसका हम बहुत व्यावहारिक स्तर पर यूज करते हैं, ये किसी एक्ट के द्वारा डिफाइन नहीं किया गया कि आप किसे पैरामिलिट्री फोर्स कहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन बातचीत में हम पैरामिलिट्री फोर्स कह रहे हैं, और जबकि मैं अभी आपसे इसके बारे में बातचीत कर रहा हूं, मुझे याद आ गया कि 1982 में हमारे समय जब एक मेंस हुआ था उसमें पैरामिलिट्री फोर्स पर बकायदे क्वेश्चन पूछा गया था, और मैं नहीं जानता था कि पैरामिलिट्री फोर्स क्या होती है। तो मैंने तो केवल शब्द के आधार पर लिख दिया था और वो तुक्का सही भी लग गया था कि पैरा और मिलिट्री तो कुछ न कुछ इस तरह के बीच की चीज होगी। खैर, तो दोस्तों सामान्य तौर पर जो हम बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्स की, तो उसमें जो सात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं वो आते हैं। देखिए, इसमें शब्द है सेंट्रल, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्स है ये केंद्र सरकार के अधीन है, राज्यों के अधीन नहीं है। पहले हम उन सातों के नाम सुन लेते हैं। असम राइफल्स का नाम आपने सुना होगा, बीएसएफ का नाम आपने सुना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसमें 1965 में जो बनाया गया था और आज सब 2.5 लाख लोग लगभग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं। इसके बाद सीआईएसएफ आपने सुना होगा, अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट में जाएंगे तो वहां जो सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं तो आपको दिखाई देंगे कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। इसके बाद है दोस्तों सीआरपीएफ, जो भी हमारा कंसर्न है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन सब के अपने अपने काम बटे हुए हैं। जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, बेसिकली जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें इनको डिप्लॉय किया जाता है। यहां तक कि जो हमारी पीस कीपिंग फोर्स जाती हैं किसी दुनिया के दूसरे देशों में शांति स्थापना के लिए, उसमें भी सीआरपीएफ के नौजवान होते हैं। आपको जब मालूम है कि जब संसद पर हमला हुआ था तब भी सीआरपीएफ के नौजवान ही, उसमें कुछ नौजवान हमारे शहीद हुए थे। ये है सीआरपीएफ जो अभी छत्तीसगढ़ नक्सलाइट हमले में 26 नौजवान हमारे शहीद हुए हैं। इसके बाद है मित्रों आईटीबीपी, नाम आपने सुना होगा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आपने देखा ना, पुलिस शब्द भी है। सीआरपीएफ में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दोनों शब्द है, पुलिस फोर्स। इसके बाद दोस्तों एनएसजी आपने सुना होगा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इनको सच पूछे तो ब्लैक कैट के नाम से भी जाने जाते हैं, कमांडोज ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं। और जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो इसके बाद फिर एनएसजी का गठन किया गया था। और इसके बाद फिर है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ये 7 पैरा मिलिट्री फोर्स है। लेकिन मैं आपको एक बात यहां बता दूं कि 2011 में फिर गवर्नमेंट ने इसे क्लियर किया, और ताकि नाम को लेकर के गड़बड़ी न हो, तो जो पैरामिलिट्री फोर्स नाम है इसको केवल इसके अंतर्गत 2 ऑर्गेनाइजेशंस को रखा गया। असम राइफल्स से बहुत पुराना है, 1835 में असम राइफल्स बना था, असम राइफल्स, और दूसरा है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। ये 2 पैरामिलिट्री फोर्स में आते हैं, और बाकी जो 5 है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, अभी जो मैंने आपको बताया एसएसबी, इनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स नाम दिया गया है। लेकिन बातचीत में व्यावहारिक रूप में इन 7 को हम पैरामिलिट्री फोर्स मानकर चलते हैं। तो मैंने ये क्लियर किया है ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रह जाए। इन 7 की जो संख्या है दोस्तों लगभग 1,000,000 के करीब है। सोचिए कि 1,000,000 नौजवान इसमें शामिल होते हैं। लगातार आप देखेंगे कि किस तरीके से जब हमारे यहां घटनाएं होती हैं सुरक्षा की, बाढ़ की, तूफान की, तो ये उसमें हमारी मदद भी करते हैं। और बहुत लंबे संघर्ष के बाद 2015 में सरकार ने फिर इन्हें भी शहीद का दर्जा दिया है। जो कर्तव्य निभाते हुए जो नौजवान मारे जाएंगे उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है। ये 2 साल पहले ही हार्डी 2015 में। तो दोस्तों इनका जो काम है वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, जो हमारे नेशनल जो सिक्योरिटी है, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्र के हितों की रक्षा करना, ये पैरामिलिट्री फोर्स का काम है। अब मैं इसके मित्रों दूसरे पक्ष पर आता हूं, और एक बात मैं और बता दूं, हो सकता है कि प्री में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। याद रखिए कि ये चूंकि आंतरिक सुरक्षा का मामला है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का भी मामला है, तो इन सब का जो नियंत्रण है वो होम मिनिस्ट्री के हाथ में है, डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं। सेना डिफेंस मिनिस्ट्री के हाथ में है, लेकिन ये होम मिनिस्ट्री के हाथ में है। आपने देखा होगा कि इसीलिए कि जब अभी एक नौजवान ने दाल में पानी मिलना और इस तरह करके वो सोशल मीडिया पर डाल दिया था ना, तो उसकी जो जांच, और उसमें तो हमारे जो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं वो एक्टिव हुए थे, उसमें आपने डिफेंस मिनिस्टर का कहीं नाम नहीं सुना होगा। यानी कि जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स हैं ये होम मिनिस्टर के अंडर में काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसे हम कहते हैं, गृह मंत्रालय। और इसमें जो बीएसएफ है इसको फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी भी कहा जाता है। मित्रों अब मैं आता हूं थोड़ा सा नक्सलाइट पर, और मुझे लगता है कि कल ये दुर्भाग्यशाली घटना घटी है, तो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए ये इस अवसर का इस्तेमाल अपनी तैयारी की दृष्टि से नक्सलाइट प्रॉब्लम जो भारत में है उसको समझने के लिए करना चाहिए। क्योंकि अभी घटना तो कल की है, आप देखेंगे कि जो हमारे नेता हैं उनके स्टेटमेंट भी आने शुरू होंगे, सरकार इसके लिए अब क्या क्या कर रही है इसके बारे में भी अखबारों में खबरें आएंगी, आर्टिकल्स भी आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स भी आएंगे, तो आप इन सब पर बहुत ध्यान से गौर करके इस टॉपिक पर एक अच्छी कमांड बना सकते हैं। क्योंकि देखिए जो सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो याद रखिए कि उन्होंने खासकर इस नक्सलाइट को आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर माना था। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है ये कि ये जो नक्सलाइट्स हैं ये हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर है, बेहद सीरियस मामला है। और आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में बकायदे आंतरिक और बाह्य सुरक्षा शामिल है, और चूंकि ये घटना इतनी बड़ी हुई है तो डेफिनेटली ये फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपकी प्रिपरेशन के लिए हो जाता है। दोस्तों, मैं बहुत लंबे विस्तार में तो इसके नहीं जा पाऊंगा, वक्त कम है और मुझे ये लगता है कि आप सब भी काफी कुछ नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन यहां मैं कुछ उसमें वैल्यू एडिशन करना चाह रहा हूं। वैल्यू एडिशन इन द सेंस कि जो आप जानते हैं उसमें उसको शायद मैं थोड़ा सा और मूल्यवान बना सकूं, ज्यादा ठोस बना सकूं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा फ्रेंड्स कि जो नक्सलाइट जो मूवमेंट भारत मूवमेंट के आंदोलन नहीं कहना चाहिए, ये शुरू में भले ही आंदोलन के रूप में आया हो, अब इसको मूवमेंट नहीं कहना चाहिए, ये जो नक्सलवादी जो समस्या है आपको मैप पर जाकर, भारत के मैप पर जाकर के इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये है कहां। तो आप देखेंगे कि मैप में इसको बकायदे अलग कलर से दिखाया गया है। अगर आप कुछ ऐसे मैप आपको मिल जाए कि कैसे ये नीचे से ऊपर तक बढ़ा है और बकायदे उसको रेड कलर से दिखाया जाता है, तो इसे रेड का एरिया भी उसको कहा जाता है कि ये मतलब ये खतरनाक एरिया है। अभी इससे ज्यादातर जो प्रभावित राज्य हैं मित्रों, वो अब आप यूं कह लीजिए कि उसमें चूंकि अब आंध्र प्रदेश दो राज्यों में विभाजित हो गया है, तो तेलंगाना के बाद नो डाउट कि फिर आपके आंध्र प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़ और फिर उड़ीसा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इसके बाद अब ये बिहार तक भी है। हालांकि ठीक है वो नक्सलवादी नहीं कहते, वो अपने आप को वो माओइस्ट कहते हैं, माओवादी कहते हैं। जब बिहार में इस तरह की घटनाएं होती है ना, तो आपने देखा होगा अखबारों में माओवादियों के नाम से होता है, और जब इधर घटनाएं होती हैं तो ये नक्सलवादियों के नाम से होता है। लेकिन सच पूछे तो अगर हम पॉलिटिकली आइडियोलॉजी की बात करें तो ये जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसका माओइस्ट ग्रुप है, ये जो नक्सलवादी हैं। आपने देखा ना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो फिर कई कम्युनिस्ट पार्टी बनते चले गए, तो सीपीआई है ही है, सीपीआई एम बना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, फिर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी मार्क्सवादी बना, फिर उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी बना, मतलब अलग अलग उनके विभाजन होते चले गए। और माओ आप जानते हैं वो चाइना के लीडर थे जिन्होंने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर के अपने देश में क्रांति की थी, है ना। माओ तो उनकी आइडियोलॉजी को, और माओ कहा करते थे कि जो स्वतंत्रता है वो बंदूक की नली से निकलती है, यानी कि हिंसा के माध्यम से ही स्वतंत्रता पाई जा सकती है, या यूं कह लीजिए कि जो दलित पीड़ित शोषित लोग हैं इनका उत्थान कराया जा सकता है। तो दोस्तों आपको बकायदे नक्शे में जाना चाहिए और आप देखेंगे कि नक्शे का जो हमारा ईस्ट घाट है, जो पूर्वी घाट है, उसके किनारे किनारे आप चलते चले जाइए तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आपको झारखंड कह लीजिए, बिहार न करके झारखंड बिहार, इस पूरे के पूरे एरिया में आप पहुंच जाएंगे। तो आपको बिल्कुल वो जो कॉरिडोर है, जो रेड कॉरिडोर है, वो रेड कॉरिडोर दिखाई दे जाएगा कि इस एरिया में नक्सलवादी ज्यादा सक्रिय है। बट नेचुरल है कि ये वो एरिया है जो थोड़े से जहां जंगल बहुत हैं, आदिवासी समुदाय ज्यादा रहता है, और जहां आदिवासी समुदाय हैं आपको मालूम है कि अंग्रेजों के समय से ये रहा कि उनकी जो संपत्ति थी, संपत्ति उनकी क्या थी, बेचारों की संपत्ति तो जंगल और जमीन ही थी, उस पर सरकार ने अधिकार कर लिया, इसके कारण उनकी हालत लगातार खराब होती चली गई। बाद में जब औद्योगिक विकास का दौर आया तो फिर माइनिंग वो उद्योगपतियों के हाथ में चला गया, वनों के ठेके दिए जाने लगे, तो विस्थापित तो वो होने लगे। तो बेसिकली ये नक्सलवादी कहते हैं कि हम इन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये अपनी आइडियोलॉजी बताते हैं, लेकिन सच अब ये नहीं है। किसी समय जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो नो डाउट कि वो शोषितों के विरुद्ध खड़े हुए थे, और जो शोषितों के हित में खड़े हुए थे, और जो शोषक थे उनके विरुद्ध। तो शोषक कौन है? पूंजीपति, उद्योगपति, और उसी में वो सरकार को भी लेते हैं। तो उन्होंने अपना एक संघर्ष छेड़ा, लेकिन अब तो यह एक प्रकार से एक संगठन बन गया है जो अपने रास्ते से भटक चुका है, जो अपनी आइडियोलॉजी भी खो चुका है, और एक तरीके से ये लूट पाट खसोट पैसा इकट्ठा करना कैडर कुछ इस तरह का ही काम करने लगा है। और कुछ समय पहले ही हमारे संसद में बताया गया था कि पिछले 5 सालों में इन नक्सलवादियों ने लगभग 6,000 हत्याएं की, 6,000 लोग इसके तहत मारे गए हैं, नक्सलवादियों के द्वारा मारे गए हैं। तो स्थिति एक गंभीर है दोस्तों, लगभग 90 जिले जो मैंने अभी राज्य बताए हैं, इनके 90 जिले लगभग इससे प्रभावित हैं। तो मित्रों ये मैंने थोड़ी सी आपको जानकारी दी वैल्यू एडिशन के रूप में, और मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लें, और खासकर वो स्टूडेंट जो इन क्षेत्रों से हैं उनके तो इंटरव्यू तक के लिए यह जो टॉपिक है बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट सिद्ध होगा। दोस्तों अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर, और प्रेस क्लिपिंग्स पर क्या आता हूं, बस आया भर हूं और तुरंत जाना चाहूंगा क्योंकि वक्त नहीं है कि मैं इस पर बात करूं, और मैं कोई बहुत जरूरत भी अभी फिलहाल नहीं समझ रहा हूं कि प्रेस क्लिपिंग पर बात की जाए। तो दोस्तों ईमेल के अंतर्गत सभी ईमेल लिखने वाले अपने दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। मित्रों मेरे पास एक मेल आया है सेजल राय का, जो खगड़िया बिहार से हैं, वो स्कूल में टीचर भी हैं और उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों को afeis.com के बारे में बताते हैं और उसमें काफी इंटरेस्ट बच्चे दिखा रहे हैं और उन्होंने सुनना भी शुरू कर दिया है। तो सेजल, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अपनी एकेडमी की टीम की ओर से आपके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, और मैं चाहूंगा कि आप इसी तरह से afeis को लोगों तक पहुंचाते रहें। इसमें कम से कम मुझे कोई दो राय नहीं दिखाई देती मित्रों कि सुनने से कुछ न कुछ फायदा ही होगा, और इसके बदले में उन्होंने देना कुछ भी नहीं है, सिर्फ उन्हें एक चीज देनी है। रोजाना अगर सिर्फ डेली ऑडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट यूं कह लीजिए कि 20-21 मिनट का समय, और लाइफ मैनेजमेंट सिर्फ सुनना चाहते हैं तो 12-13 मिनट का समय, और अगर इन दोनों को सुनना चाहते हैं तो लगभग 32-33 मिनट का समय, इतना ही तो देना है। और हमारे पास एक दिन में 1440 मिनट होते हैं और मैं उनसे 40 से भी कम मिनट उन 1440 में से मांग रहा हूं, और मुझे लगता है कि ये 40 मिनट उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास एक मेल है शशिकांत राव का, उन्होंने भी लिखा है कि वो उन्होंने afeis.com के बारे में काफी लोगों को जानकारी दी है। तो शशिकांत जी, आपको भी इसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों आप सभी को धन्यवाद, सभी के प्रति बहुत आभार, और आप में से ही मैं कुछ मित्रों के नाम ले रहा हूं। रवि रजक, चेतन प्रकाश वर्मा अलवर राजस्थान से, शुभम गुप्ता इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, विशेष पाठक गया बिहार से, प्रभात कुमार राय गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, मनीष कुमार गया बिहार से, ईशु शर्मा दिल्ली से, आयुष सिंह, शैलेंद्र कुमार शीतलपुर उत्तर प्रदेश से, लता शर्मा जयपुर राजस्थान से, जितेंद्र सोनी आगर मालवा मध्य प्रदेश से, और मनोरमा शर्मा न्यू दिल्ली से। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।